Yeah. స్వామీ శ్రీ ప్రభుపాదాకి సమవేత భక్తవృందకి గ్రంథరాశ్రమ భాగవత మహాపురాణకి పితాయ గౌరహరికృమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాగవత మహాపురాణ పాఠ పంచమ స్కంద ఏకాదశ అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య ఏకాదశ. ద్రవ్య స్వభావాశయ కర్మ కాళే ద్రవ్య స్వభావాశయ కర్మ కాళే ఏకాదశామి మనసు వికారః సహస్రశః శతశః కోటిశశ్చ एकादश ग्यारह अमी ये सब मनसः विकारा मन के विकार सहस्रशः हजारों में शतशः सैकड़ों में कोटिशश्च तथा करोड़ों में क्षेत्रज्ञतः आदि भगवान से ना नहीं मिथः परस्पर ना न तो स्वतः अपने आप से स्यू है. अनुवाद ग्रंथापुर द्वारा अनुवाद. भौतिक तत्व द्रव्य या विषय प्रकृति स्वभाव मूल कारण संस्कार भाग्य तथा समय ये सब भौतिक कारण है। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृद्धियाँ पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती है, किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन ये श्री भगवान के आदेश अनुसार होते हैं। तात्पर्य, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तत्वों की समस्त अंतक्रियाएं, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, जिनसे मन तथा चेतना में परिवर्तन होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, वे सब श्री भगवान के निर्देशन में घटित होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, सर्वस्य चाहम विधसन्निविष्टो भक्त स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। जैसा कि यहाँ पर उद्धृत है, परमात्मा या क्षेत्रज्ञ सबको आदेशित कर रहा है। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, किंतु परम क्षेत्रज्ञ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। वह साखी और ज्ञाता आज्ञा देने वाला है, उसी के निर्देशन में सब कुछ घटित होता है। जीवात्मा की विभिन्न बुद्धियाँ उसके अपने स्वभाव से अथवा आशाओं से उत्पन्न होती है और यह प्रकृति या माया के माध्यम से भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर प्रकृति तथा तत्व भगवान के आदेश अधीन है, स्वतः कार्य नहीं करते। प्रकृति या माया न तो स्वतंत्र है न स्वतः क्रियाशील है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, प्रकृति के पीछे श्री भगवान है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने न कुंतेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति या माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है, उस कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृजातं सहगणं रघुनाथं नितमतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुतंस। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। आज प्रातःकालीन भगवत कक्षा में सभी को स्वागत है। तो ये प्रसंग में जो पहली बार आए हैं आज, जिनको पता नहीं है, ये प्रसंग इस प्रकार है। पंचम स्कंद में महाराज भरत का चरित्र वर्णन है। महाराज भरत राजर्षि थे, ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने अपने भगवत ज्ञान के परिणाम से वैराग्य लेकर के राज्य से परिवार से जंगल में जा कर के तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर कोई विशेष घटना के कारण एक हिरण के प्रति उनके आसक्ति हो गया और इसी के कारण उनको अगले शरीर हिरण का ही लेना पड़ा। कई लोगों का ये विचार है कि मनुष्य शरीर हमेशा मनुष्य शरीर ही होगा। किसी ने मुझे बता दें सेव से संतरा नहीं बनता, ये भ्रांत धारणा है। ये जीवात्मा कोई सेव संतरा नहीं, ये चिन्मय है, कोई वस्तु नहीं है। वो अपने कर्म के आधार पर 84 लाख प्रकार डिजाइन ले सकता है, जैसे जैसे कर्म के आधार पर। भरत महाराज ऐसे तो भगवान कहते हैं मन में अंत काले चमा में स्वर अनुपा कड़े पर जैसे मरते समय जैसे अंते जो मति सुगति, तो हिरण के प्रति चिंतन हुआ तो हिरण के शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन क्योंकि भक्ति किए थे इसलिए उनके याद रहा उनका जो आचरण, तो बड़े पश्चाताप किए हिरण के शरीर में भी, और फिर उन्होंने वही स्थान को चले गए अपने परिवार को छोड़ करके। तपस्या करते करते गंडकी नदी में कंठाग्रत जल में जाकर भगवत ध्यान किए और शरीर छुड़ा। तो इस प्रकार के शरीर छोड़ने के बाद में उनको एक ब्राह्मण शरीर में फिर पैदा होता है। तीसरा जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है, ब्राह्मण परिवार में छोटे बेटा बन करके पैदा होते हैं और अभी भी उनका याद है, पहले दो जन्म का इतिहास पूरा याद था, इसलिए वो बहुत सतर्क रहे कि फिर ना मेरे से गलती ना हो जाए। यही गलती के कारण मैं घर द्वार राज्य छोड़कर भजना कर रहा था, मिस्टेक के कारण ये हो गया, फिर इस बार मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए बहुत सतर्क जन्म से रहे। इसलिए जानबूझ करके जड़वत आंख था लेकिन जैसे मैं देख नहीं सकता हूँ इसी रोल की, कान था लेकिन मैं सुन नहीं सकता हूँ, मुंह जीभा होते हुए भी बोलना नहीं जानता हूँ, ऐसे नाटक किए, ऐसा नाटक किए उनके माता पिता भाई तक भी नहीं जान पाए, बोले तो जड़ देगा। बहुत प्रयास करते करते थक गए, जवानी तक इस प्रकार करते रहे, मुंह से कुछ वचन बोले ही नहीं, सुने ही नहीं, कुछ नहीं किए। माता पिता चले जाने के बाद में उनके परिवार के लोग भाई लोग उनके साथ दुर्व्यवहार किए, बोले खाता पिता रहता कुछ काम करता है नहीं, बोले कुछ काम करो, बोले इतनी हट्टा कट्टा खाता चलो काम में लगाए, और उनके सामने काम करेगा जैसे चले जाएंगे उल्टा करेगा, तो निकाल दिए घर से गांव से इधर से भटकते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने आपने आत्मरक्षा के लिए शरीर रक्षा के लिए किसी को कुछ नहीं मांगते थे, पूर्ण भगवत भरोसा, भगवान जैसे करेंगे ऐसे निर्वस्त्र होकर के ऐसे जंगल में भूलते थे घूमते थे, कैसे कैसे डाकू लोगों को पकड़ कर ले गए नरबलि देने के लिए, वो तो बांध कर ले जा रहे थे लेकिन देखे ये तो जड़ है कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, खोल कर देखे तब भी चला, बोले तुझे गला काटेंगे ना, कोई बात नहीं काटो। तो उनको खिलाए पिलाए माला पहनाए हल्दी सिंदूर लगा करके जब बद्धा शिला पर रख कर मारने गए तभी भी कोई उनका विकार नहीं था, कोई चिंता नहीं डर नहीं मुझे मारने जा रहे हैं, क्योंकि जानते थे वो मुझे क्या मारेंगे, मारने वाला जब चाहेगा तो मार देगा, नहीं चाहेगा तो वो क्या मार सकते, पूर्ण विश्वास था। निडर होकर के बद्धा शिला पर सर रखे और बधि की जो तलवार लेकर के आया वो देवी के सामने देवी मूर्ति से प्रकट होकर के सबको मार दिया, सबको मर्डर कर दिया, तभी भी आए तभी भी मुंह नहीं खोले, वापस आकर जंगल में घूमते घूमते राजा रघुवन जा रहे थे सत्संग के लिए, उनका एक टायर पंचर हो गया, तो एक स्टेपनी ढूंढ रहे थे मतलब टायर मतलब कहा पालकी में, तो उनका जो कमी पड़ा तो उनको देखे बोले अटा कटा है लाके जोड़ दो लाके लगा दिए, तभी मना नहीं किए क्योंकि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हो देखना चाहता भाई क्वालिफिकेशन ये सही है काम के लिए लाइक है नहीं, और जबरदस्ती अपॉइंटमेंट कर दिया तो चले, लेकिन अपना स्वभाव अपना है, पर चलते समय में देखे कोई चिट्ठी है पर उठा कर जब जा सके तब पर डल ऐसे अप डाउन करेंगे, ऊपर मेरी एक्शन राजा को हुआ, राजा क्रोध से उसको लांछित गाली गुलज वचन कहा, तब इतने कई 25-30 साल जन्म से लेकर मुंह नहीं खुलते, अब मुंह खुले और कुछ वचन कहे रघुवन महाराज को, इस वचन का इतने प्रभाव था इतने शक्तिशाली था, राजा ने उनको सुन करके उतर पड़ा पालकी से दंडवत प्रणाम किया, एक पालकी का कहा ऐसा बात कर रहा है, तो वो बड़े ज्ञानी थे महाराज, तो आकर के उनको परिचय पूछे, देखे कि जनी पड़ा हुआ है महिला के चट हो चुका है, बोले कोई ब्राह्मण को अपमान तो नहीं कर दिया, ऐसे बड़े संतुष्ट हुए, मांग कर पूछे फिर बोले कि आपने जो मुझे वचन कहे मुझे तो लग रहा है कि ये सही नहीं है, उनके हिसाब से समझ उनको पूछे तो, और उनके क्षमा मांगे क्षमा प्रार्थना करने के बाद में उनसे जो उनका डाउट जो पूछे उनका संदेह कि इसे कैसे करें इसे कैसे सत्य हो सकता है, तो उसको उत्तर देते हुए ये पूरे अध्याय है एकादश अध्याय, जिसमें भरत जड़ जड़ रूप में जो थे राजर्षि जड़ भरत, उन्होंने राजा रघुवर्ण को जो परम ज्ञानी थे तत्व ज्ञानी थे उनको उपदेश दे रहे हैं, और ये उपदेश हम जैसे कि तू सर के ऊपर से 2 फीट ऊपर से जाने वाला, इतने कृष्ट है वो आत्मधर्म है, इस आत्मधर्म का व्याख्या स्वयं आत्मदर्शी जिनने आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, तीन जन्म का अभिज्ञ राजर्षि जड़ भरत ने वो कर रहे हैं। इसमें से आप 10 श्लोक का आलोचना सुन चुके हैं। आज के श्लोक में बताते हैं कि द्रव्य स्वभाव आशय कर्म काल, कि ये जो सब है कई विकार के बारे में वर्णन कर चुके हैं मन की वृत्तियों के बारे में। अब कहते हैं कि ये जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब विषय वस्तुएं हैं, द्रव्य स्वभाव, स्वभाव मतलब परिणाम के हेतु, द्रव्य स्वभाव आशय, आशय मतलब संस्कार, कर्म संस्कार, आशय और कर्म भाग्य है, अदृष्ट जो हमारे कर्म पूरे करने से आया, कर्म है अकाल गुण को क्षोभित करने वाला जो काल हो रहा है गुण काल, ये सब तो निमित्त कारण है, ये सब तो निमित्त है। इन्हीं के द्वारा जो मन के वृत्तियां हैं, मन के वृत्ति आप पहले आलोचना कर चुके हैं, जो नए आए हैं उनको बता देता हूं, मन की वृत्तियां एकादश 11 प्रकार का कहा गया, जो एकादश आमी कहा गया इधर, वो मन की वृत्ति क्या है ना, जैसे पंच कर्मेंद्रिय है और पंच ज्ञानेंद्रिय है और एक अभिमानी शरीर, वही है, उन्हीं के द्वारा मन काम करता है, मन उन्हीं के राजा है, एकादश इंद्रिय के रूप में मन को माना गया और उनके अंडर में ही 10 प्रजा है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म, वो उनके प्रजा है, वो उनके राजा है मन। मन एवं इंद्रियाणां, भगवान बोलते हैं मन हो इंद्रियों में, ओ सचमुच मन अगर साथ ना दे ये सारे इंद्रिय यूजलेस, कोई काम नहीं। आप देख रहे हैं मुझे सामने आंख खोल करके, बिल्कुल आंख में चश्मा नहीं लगा अभी आपका, आप अच्छा दृष्टि शक्ति है, लेकिन अगर देख रहे हैं लेकिन और कोई के बारे में, किसी के बारे में सोच रहे हैं, अन्य मनस्क है, आपका सामने कोई आया उठा कर लेके चला गया आपको पता नहीं चला, अब बोले अरे कहाँ गया, अरे तुम्हारा सामने तो आ गया, अरे मैं देखा नहीं, किसी ने देखा, आप तो खुल के बैठा था, अरे अन्य मनस्क था, अनमाइंड कोई, ऐसे ही दो कान में ठिप्पी नहीं लगाया, खुला है सुन रहे हैं, अगर अनमाइंड फूल हो तो भी सुन नहीं सकते। इस प्रकार मन अगर साथ न दे तो किसी भी ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्मेंद्रिया भी काम नहीं कर सकते, ये मन की प्रजा है सब, मन उनके राजा है। तो इसलिए मन की वृत्तियां जो मन करना चाहता है, इस 11 के ये शरीर और शरीर में जो 10 मशीन है इन्हीं के द्वारा काम करता है, इनको मनसाविकार, एकादश जो चित्त वृत्ति, जो एकादश प्रकार के जो विकार है, ये 11 प्रकार, ये जो द्रव्य कर्म काल आशय आदि के द्वारा मिल करके इतने प्रकार भेद करते हैं, अवान्तर कितने कितने बन जाते हैं, पहले तो 100 बनते हैं, फिर 1000 बनते हैं, फिर करोड़ बनते जाते हैं, अलग अलग इच्छा, जैसे आपने कई गर्मी के समय पसीना होता, थोड़ा दुर्गंध होता है, पूरा सेंट चाहिए, कोई पैरिस का सेंट लगाया, कोई चंदन लगाया, कोई अगरू लगाया, कोई और कोई लगाया, अब कितने हो सकता है, आपने कर्म भाग्य संस्कार काल में, कोई काल में क्या उपलब्ध है, इसी को लेकर के करोड़ों करोड़ों प्रकार के हो सकता है, जैसे गंध है रूप ऐसा, क्योंकि कौन सा रूप सोना पसंद है, किसी को चांदी, किसी को प्रवाल, किसी को क्या, किसी को क्या, तो ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार अनेक अनेक अवान्तर भेद हो सकता है, ये सब में मन के विकार और इस निमित्त भूत कारण के द्वारा ये अनेक भेद कर सकता है, लेकिन उसमें असली शिक्षा बताते हैं राजर्षि जड़ भरत ने, बोलते हैं कि ये सारे इतने इतने वैरायटी हो जाते हैं, हजारों करोड़ प्रकार के भेद हो जाते हैं, लेकिन ये भेद अपने आप से नहीं होते हैं, ना तो ये मन के विकार अपने आप भेद कर पाते हैं, ना ये विकार और ये जो आशा जो काल कर्म आदि, ये उनसे दोनों से आपस में मिलकर कहते हैं विधा, ना स्वतः, ना स्वयं अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, ना दोनों आपसे मिल करके कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। हम देखते हैं चूना है, उसे पानी डाल दो, रिंग गर्म पानी बन जाएगा, तुरंत खोलेगा, विकार होता है, लेकिन ये विकार कैसा हम तो चूना करता है ना पानी करता है, यह हमको पता नहीं, ना तो चुना करता है ना पानी करता है, दोष में किसी भी दोष नहीं, दोनों को मिला देने से कैसे हो जाता है। तो यहाँ राजर्षि जड़ भरत कहते हैं कि ना तो ये द्रव्य काल कर्म आदि ना तो ये विकार अपने आप में परिवर्तन हो पाते हैं, ना दोनों मिलकर के आपस में पार्टनरशिप करके इतने सारे वैरायटी प्रोडक्ट, बोले ना, बोले क्या न क्षेत्रज्ञतः, जो असली मालिक है क्षेत्रज्ञ, असली क्षेत्रज्ञ है परम पुरुष भगवान, जो इसको क्षेत्र कहा जाता है। हम सभी का क्षेत्र है शरीर, हमारा जो शरीर है इस शरीर के अंदर दो क्षेत्रज्ञ है, इस क्षेत्र का दो क्षेत्रज्ञ है। एक पहला क्षेत्रज्ञ है जो जीवात्मा, जो क्षेत्रज्ञ तो है, इस शरीर का नक्श लेकर के सिख पर्यंत इंच इंच का सारे ज्ञान उनको है। कहीं भी चित्ती बैठा, मैं आपको देख रहा हूं, हाथ बिल्कुल घटना स्थल पर जाएगा, उसको मसल करके मडल करके आ जाएगा चुपचाप, जैसे कुछ नहीं, बिल्कुल पीछे जा, बिल्कुल पता रहता है यही स्पॉट में, धोती के नीचे हाथ डाल करके उसको मार के आ जाए बिल्कुल, क्योंकि सारे शरीर का ज्ञान जीवात्मा को होता है। लेकिन आप लोगों का शरीर में कुछ होगा ये नहीं पता चला, मेरा शरीर का ज्ञान मेरे जी आत्मा को होता है। लेकिन और एक क्षेत्र के इस शरीर में है, एक और पुरुष बैठता है जो परम पुरुष है, जो परम क्षेत्रज्ञ है, उनको ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव जोनि के जितने शरीर है, सारे के शरीर के नक्श सिख तक के ज्ञान टीट पीट भरा है उनके पास। प्रत्येक किसी का क्या होता है एक एक इंच में उसको पूरा ज्ञान, ये परम क्षेत्रज्ञ है। उस परम क्षेत्रज्ञ अनंत शक्तिमान है, स्वतः परम शक्तिमान है, इन्हीं के शक्ति के कारण ये सारे काम चल रहा है। ये जो अवान्तर भेद, जो अनेक प्रकार के विकार के, अनेक प्रकार के सृष्टि जो होता है, ये सभी के मूल कारण ना तो द्रव्य है, ना तो वृत्तियां है, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि क्षेत्रज्ञतः ना उनके द्वारा नहीं है, बल्कि जो क्षेत्रज्ञ, जो परम शक्तिमान परम पुरुष भगवान स्वयं है और सब शरीर में परम क्षेत्रज्ञ के रूप में है, परमात्मा के रूप में, वो ही मुख्य कारण है। उन्हीं के शक्ति से ये सब घटित हो रहा है, उन्हीं के शक्ति को जानना चाहिए। जब तक हम उन्हीं को नहीं जान पाते हैं तब फंसे रहते हैं। मैं क्या, और सभी चक्र अभिमानी आपने शरीर को, हमारा अहंकार को हम समझ कर मिथ्या झूठे अहंकार, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, हमेशा मैं मेरा करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। और थोड़े दिन में मैं जब निकल जाएगा शरीर में, वो हाथ पर ऐसे को ऐसे रह जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। वो मैं जाकर के दूसरे कोई शरीर में चला जाएगा, उसमें क्या होगा पता नहीं, किस शरीर में चला जाए फिर क्या होता है। तो इसलिए सारे जो है, भले बाहर से हम देखते हैं वो करते हैं, लेकिन सब का असली जो कंट्रोलर है, वास्तविक परम नियंता भगवान श्री क्षेत्रज्ञ है, जो परमात्मा रूप में है। उसी को समझाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते, भगवद गीता में कहते हैं, मरा मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति ध्यान जाए, मेरे से परे कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं। ओतः प्रोतः, ओत प्रोत मतलब जैसे एक कपड़ा है, एक कपड़ा का जो मेटेरियल है वो धागा है, धागा से कपड़ा बना है, सीधा और टेढ़ी, आड़ी टेढ़ी, आड़ी टेढ़ी कपड़ा बन गया केवल धागा से, धागा के अलावा दूसरा कुछ मेटेरियल उसमें है ही नहीं। इसी प्रकार ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, गंध रूप रस पदार्थ आदि, सब केवल परमात्मा है आड़ी टेढ़ी रूप में। कोई आपने रंग स्वभाव बदल कर कहे और दूसरा कुछ है ही नहीं। इसी को मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र भी कोई और है ही नहीं धनंजय। अर्जुन क्या समझे तुझे, क्या बताऊं, सब मेरा ही खेल है। क्यों ये सारे इतने देखता है ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मैं सभी में ओत और प्रोत, वही आड़ी तटी में बता, ओत और प्रोत रूप में मैं ही सब जागा में हूं। कैसे हूं भगवान उदाहरण बता है, सूत्रे मणिगणा इव, जिसे माला है मनके के 108 मोती है कि कितने मोती है, एक के ऊपर नीचे, एक के ऊपर नीचे, सब साइज में है। अब बोलेंगे आप तो देखते हैं मणिगणा, मोती को देखते हैं, लेकिन ये आपको बताने क्यों दिखाई नहीं पड़ते, मोती के अंदर एक धागा है, सूत्रे, एक धागा के ऊपर ये हजारों मोतियां टिके हुए हैं अपने अपने पोजीशन में, ये धागा टूटे सारे मोती बिखरे, उनका स्थिति ही नहीं रहेगा, सारे बिखर जाएंगे, उनका अस्तित्व केवल एक धागा के ऊपर टिका हुआ है। भले हजारों मोतियां क्यों ना हो, लेकिन एक धागा के ऊपर अपने अपने पोजिशन में टिके हुए हैं, वो ना हो सारे अस्तित्व बिखर जाए, उनका कुछ इस अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार ये संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने ग्रह नक्षत्र तारका चंद्र जो कुछ हम देख रहे हैं, सब अपने अपने पोजीशन में ठीक ठीक से काम कर रहे हैं, बोलते उन्हीं के मैं हूं। इसीलिए गामा विश्वच भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मैं ही इस धरती के अंदर प्रवेश करके मेरे शक्ति से उनको टिका कर रखा हूं। कौन से को पिलर में रखा, ना को टांग करके रखा, उन्हें शून्य में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं, क्योंकि मैं उनके अंदर हूँ। सूत्र मणि जैसे धागा के ऊपर में मणि, इसी प्रकार हूँ, इसी को लेकर मैं सब जगह हूँ। संपूर्ण काल चक्र सब कुछ मेरे से होता है। हम देखते हैं प्रतिदिन जितने उम्र हो गया, इतने दिन से हम देख रहे हैं, डेली सुबह पूर्व के वहाँ सूरज उगता है, पश्चिम में डूबता है, दोपहर होता है, सारे होता है, दिन रात से परिवर्तन होता है। कैसे होता है? कुछ नहीं, अपने आप होता है क्या? अपने आप होता है क्या? नहीं। जब चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजः, भगवान कहते हैं मेरे आंख है ये चंद्र सूर्य, जब चक्षुरेश सविता, सविता मेरा आंख है, जब चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा, समस्त ग्रह नक्षत्र का राजा जो रवि है, जो सूर्य है, वो राजा भी मेरे प्रजा। यस्य ज्ञाया भ्रमति संवृत काल चक्र हो, मेरे आज्ञा से ही इस काल चक्र रूप में भ्रमण कर रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। किसी भी दिन एक दिन बंद हो जाए तो हमारा जीवन उसी दिन खत्म हो जाए। तो नॉन स्टॉप चल रहा है, वो लाइट घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ना, माई अड़। यस्य ज्ञाया, जिनके आज्ञा से भ्रमित काल चक्र भ्रमण कर रहा है, जिससे ज्ञान भ्रमति समृत काल चक्र, वो तो कौन है, किसका आज्ञा, न गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, वही गोविंद वही आदि पुरुष है, उन्हीं को भजन करो, वही है मुख्य कारण, उन्हीं के आज्ञा से ही काल चक्र चलायमान है। उसी को भगवद गीता में स्वयं कृष्ण अपना सुमुख से ठोक कर कहे, बोले साफ बोलते हैं कि कैसे होता है, प्रकृति प्रकृति के द्वारा होता है, नेचर नेचर तेरे बाप का है, प्रकृति है किसका, प्रकृति भगवान ठोक करके बोलते, मया धक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, इसी चराचर जगत में जो प्रकृति जो सभी को चलायमान करता है, तो प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कुंते, कोई दूसरा हेतु है ही नहीं। जगत भी परिवर्तते, इस जगत का बनना बिगड़ना परिवर्तन होना उसके पीछे कोई और दूसरा कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है कि प्रकृति प्रकृति मेरी अधिकता मेरे भाई अड़क को काम कर रहा है, मैं अधिकारी हूं, मेरे अधिकार से मैं उनको डर दिया हूं, और अथॉरिटी मानकर को डर के काम करती है प्रकृति। प्रकृति कैसे मेरी है, मेरे शक्ति है और मेरे आज्ञा से कार्यरत है, और हम सब प्रकृति की उपज है, ये शरीर है ये प्रकृति की उपज है, और उसी के अंदर गुण को डाल दिए, गुण और प्रकृति के बनाए हुआ शरीर अपने खेल कर रहे हैं, उसके पीछे हम जो जीवात्मा है, हम नहीं समझ पाए, भूल गए, मर गए, हम उन्हीं श्री भगवान जो परम शक्तिमान है, परम नियंता है, मालिक है, उन्हीं के अंश है, लेकिन आपने आपको भूल चुके, आपने आप भूल करके उन्हीं के साथ कितने अमर संबंध है, ये संपर्क को भूल करके यहाँ दुख भोग रहे हैं। जिस क्षण जिस दिन ये संपर्क का हमको पता चल जाए, फिर हम कैसे, सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री महाप्रभु कहे, कले जो जीवों का दुखों का कारण तो ये अज्ञान है, क्या अज्ञान, बोले भीख मांग रहा है, बोलता है कितने दरिद्र हूँ, कुछ भी नहीं, लोग कितने मजे से खा रहे हैं, मुझे खाने कितने भटक भटक कर रो रो करके अपने बढ़ तो कोई एक ज्योतिष आया, बोला अरे तुम भीख मरे इतनी दर्द भूख रहा है, पता है तेरे दादा परदादा का इतने माल रखा हुआ, अरे दादा पता कुछ भी नहीं, कुछ नहीं रखते यार, अरे तुझे पता नहीं है तेरे परदादा का कम से कम एक टन सोना भरा पड़ा है, कहाँ पे उसी के नीचे, जिसका ऊपर बैठ के तू रो रहा भीख मांग रहा है उसी के नीचे है लटा हुआ। तो बता देता है, बताने से विश्वास पहले नहीं करेगा, बोले प्लीज थोड़ा वो ढंग से बताओ, पास में बैठा कर वो गणना करता इसी जगह पर है, 5 फीट खुदाई करने से मिल जाएगा। तो कितने उनका फिर भीख मांगेगा, खुशी हो जाएगा वो अब खुदाई करते हैं किस तरह। तो उनको बताएगा इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ खोदो इसे मिल जाएगा। सुन करके अभी खुदाई किया ही नहीं, कन्फर्म जब हो जाएगा तब तो सपना देखने लगे, आनंद के सपना देखने लगे। तो हम जानते नहीं कि हमारा संबंध किन से महाधन से है, किस महाधन से है। उन्हीं को छोड़ करके हमारा जो वृत्ति है, जो मन है, इंद्रियों के राजा मन, इस मन ही हमको इसे दरिद्र करके रखा है। मन से मान लिए हम इसे ही असहाय, सच में ख्याल पता से जो मन रहे, इस मन के द्वारा हजारों करोड़ों प्रकार की अन्य अन्य रंग बिरंग करते करते उसी में फंस करके मरते हैं। कितने जन्म मृत्यु, कितने शरीर का विभिन्न प्रकार के विकार करते आ चुके हैं, लेकिन इससे बच नहीं पाते हैं। ये मन हमको इस प्रकार फंसा कर रखा है। अगर इस मन को हम अपना यूज में न लगा करके भगवान को समर्पण कर दे तब उसी दिन से काम बन जाए। उसी दिन से भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, मैं आसक्त बना पार्थ जोग जन्म दास है, मेरा आश्रय लग रहा। पहले मुझे मन को दो फिर मेरे में आश्रय करो, मन को तेरे पास रखकर तू आश्रय किसे लगा भाई, तेरे मन में निकलेगा नहीं। मन को पहले मुझे दो फिर मेरा आश्रय लो। मन एवं मनुष्याण, मन ही कारण है, इसलिए भगवान मन मना भव। जब मन को भगवान को दे देते हैं तो ये सारे नाटक मन सारे मन हो जाए। इसी मन के कारण कई जन्म से मन हमको छोड़ा नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर तो मर जाता है, जल कर राख हो जाता, पंचभूत में लीन हो जाता है, लेकिन मन थोड़ी जलता न मरता कुछ नहीं। मन फिर उस आत्मा के साथ जाता है दूसरे शरीर में, फिर दूसरे शरीर में, वो तो अवान्तर समय से रहता आया कितने काल से। तो जब तक किसी मन को सुधारेंगे, सुधारेंगे क्या, सुधारने का एक ही उपाय है, उसको भगवान को दे दो। भगवान आज से मन आपका है, आपकी इच्छा से मन काम करेगा, मेरे इच्छा से मैं मन काम नहीं करूंगा। उसी दिन मन सुधर जाएगा, हम भी सुधर जाएंगे केवल यही करने से। नहीं तो आपने अदृष्ट से कितने जन्म के कर्म के कारण और काल और संस्कार और समय के अनुसार हम क्या क्या करते रहते हैं और बोलते हैं कि क्या करूं, मैंने सोच रहा हूं, मैंने करा, तुम इसे कर रहा है सारे। जब तक भगवत समर्पण नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सचमुच ऐसा मन का खेल है। एक सत्य घटना मैंने मुझे कुछ बता रहा था किसी ने कि उन्होंने एक सत्य घटना हुआ था, किसी ने एक मर्डर किया, तुमने कोई बड़ा गुनाह किया तो उसको पुलिस पीछा किया पकड़ने के लिए, वो दिन में था जब उनको मर्डर किया, उसको पीछे पकड़ा पुलिस लेकर भागा। वो दौड़ रहा था, उनका कोई मित्र मिल गए तो दो मित्र थे, उनको बोले पुलिस भागकर मुझे बचा लो, तो उनको बीच में बैठा लिए, बीच में बैठा करके फुल स्पीड मोटरसाइकिल में चले, उसको पुलिस भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, वो बहुत आगे चले गए, पुलिस आगे चले गए, लेकिन कहाँ जाएंगे, जाते 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 एक जगह पे वो रेलवे लाइन जाता ना, रेलवे स्टेशन पड़ जाता, तब क्या ट्रेन अभी आना वाला है, जा नहीं सकते। और फिर भी उन्होंने बोला कूद कर तो भाग के चला जाऊं, कूद कर तो भागने जा रहा था तो ऊपर से कोई एक बाज पक्षी है, वो एक सांप को पकड़ कर लेकर जा रहा था खाने के लिए, पकड़ कर लेकर जा रहा था, सांप अपना प्रयास कर रहा था कैसे भी कैसे, वो आसपंजा से निकल गया, गिर करके गिरा तो गिरा आगे पीछे आदमी, बीच वाले आदमी के सर में गिरा, उसको काटा और मरा, मोटरसाइकिल में बैठे बैठे मर गया। बताओ भगवान जिसको मारना चाहेंगे कैसे भी बचा सकते, कोई उपाय है ही नहीं, है नहीं। और दूसरे उसी के उदाहरण देखते हैं कि जंगल में एक पेड़ के ऊपर घोंसला था, उसमें कबूतर की दंपति रहते थे, बेचारा कबूतर अंडा दिया था, अपने बच्चे को खिला रहा था, इतने में एक शिकारी था, वो कबूतर को मार के खाने के लिए बिल्कुल देख लिया और बिल्कुल निशाना लगाया, अपने तीर लगाया, बोला तीर मारूंगा एक बार कबूतर खत्म, बिल्कुल अपना विशेष बात है तो मार के गिराऊंगा उसको लेके जाऊंगा। वो लक्ष्य करके तीर कमाण कबूतर कर कबूतर नजर पड़ गया, अरे आज तो बिल्कुल शेर छोड़ने वाला, तो मारूंगा मैं, मर जाऊंगा, उड़ जाऊ ऊपर, ऊपर की ओर देखा तो ऊपर से वो बाज की घूम रहा है, अब झांप देकर उसे खा जाएगा। ऊपर से बाज खाने की आटा कर रहा है, नीचे से शिकारी कर रहा है, और कोई निरुपाय है, बोला बचूंगा कैसे, बचने का कोई उपाय नहीं, तो इस निरुपाय में निसहाय होकर के हे हरि, उनके भाषा में उनकी जैसे प्रार्थना कर सकती है चिड़िया, अपनी भाषा में भगवान को प्रार्थना की, अब मन भगवान को दे दी, बोले अब तो मरने वाला है, ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर से वो शिकारी पक्षी हो दबोच खा लेगा मुझे पकड़ कर, उससे बचो तो वो तो ऐसे मर जाएंगे। तो आपने सर्वस्व मन को हरि शरणम कर दिया, भगवान के शरण में दे दिया, बोले प्रभु आप जो बचाने वाला बचाओ तो बचाओ, नहीं तो नहीं बचाओ। अब इसी अवस्था में बाण छोड़ने वाला ही था, ऊपर से वो बाज पक्षी उनको झपट के लेने वाला ही था, उसके बीच में निश्चल रूप में रह करके मन को भगवान में लगा दी, तो कहां से काल सर्प प्रकट हुआ, जाकर के वो शिकारी जो बाण मारने वाला था उसको काट दिया, दंशन किया, अरे सांप करके डर गया, उनके तीर जो छोड़ रहा था वो हिल गया, हिल गया तो बाण तो निकल गया हाथ से, निकल करके वो चिड़िया में नहीं लगा, जाकर वो बाज पक्षी में लगा, अब शिकारी मरा नीचे, बाज पक्षी मरा ऊपर, वो बच गया नीचे। कैसे बचा, क्योंकि मन भगवान को दे दिया। तो दोनों तरफ से काल हमको ग्रसित कर रहा है, हर प्रकार से चारों ओर से दबोच रहा है, लेकिन हम दबोच कर मर भी रहे हैं, लेकिन चिकार करके इधर उधर जाते हैं, कहीं न जा करके केवल किसी भी प्रकार से हे हरि उनके चरण में अगर चला चला जाओ, भगवत शरण में चला जाओ, उनको मन दे दो, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, ये सड़ा हुआ शरीर गंदगी शरीर लेकर करेंगे क्या, किस काम का है, शरीर नहीं चाहिए उनको, कहीं भी रहो, घर में बैठो, मंदिर में बैठो, कहीं रहो, कहीं भी रहो, हर जगह में भगवान है अपने शक्ति से, केवल अपने मन को उनके शरणागत कर दो, मन मना भव मैं आसक्तम, मन को भगवान को दे दो, फिर देखो कमाल, ये सारे खेल को खेल रह जाएगा, बीच में आप बच जाएंगे। यही है मन, जब तक इस मन को हम भगवान को ना देते हैं और आपने पास रख रहे अपना काम करते हैं, तो इसी प्रकार बारंबार दुख, बारंबार मृत्यु, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस यह संसार में से भोगते रहेंगे। तो ही सिखाते हैं श्री राजर्षि भरत ने कि रावण को, तू ये जो देख रहा है, ये जो सोच रहा था इस प्रकार परिवर्तन ये सब हो रहा है, इतने प्रकार रंग बिरंगी हो रहे, वो सब कुछ दिखते तो है, लेकिन उसके पीछे जो मूल कारण तुझे पता नहीं, मूल कारण भले नहीं, ये तो इसी के था, ये लाल था पीला था मिल करके भाईलेट हो गया, नहीं भाईलेट ना लाल की वजह से था ना पीला की वजह से था, मिल करके कोई नहीं, उनका पीछे भाईलेट बनाने का शक्ति और किसी ने दिया, और किसी ने दिया। हम सभी सोचते हैं इस बात, मैं भी सोचता हूँ मूर्ख कि मैं बोल बैठ कर यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ताकत मैं बोल सकता हूँ, केवल मेरा जिह्वा है, मैं किताब पढ़कर आया इसलिए बोल सकता हूँ, नहीं, मुझे पता नहीं है शब्द कहाँ से निकलता है, कोई डॉक्टर भी शरीर को काट पीट कर देखे तभी नहीं पता कर पाया कहाँ से निकल रहा है शब्द ब्रह्म। तो मैं बोल सकता हूँ, ये जो झूठा गर्व मेरा है, अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास जिह्वा है, मुख है, शरीर है, चाहते हैं बोलना, प्रयास करके भी बोल नहीं पाते हैं, है ना, नहीं चाहते पर भी बोल नहीं पाते। और आप लोग मत सोचिए कि हम सुन रहे हैं, हमारा दो दो कान बिल्कुल खुला है, जान नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पास कान भी है और खुला भी है, बढ़िया सा कान में कंकड़ भी पहने हुए हैं, लेकिन सुन नहीं सकते, कान होते हुए भी सुन नहीं सकते, तो क्यों, सुनना चाहते तो हैं, वो भी मशीन लगा कर सुनते हैं, लेकिन खाली कान से नहीं सुन सकते, उनका क्या इच्छा नहीं सुनने के लिए, इच्छा होते हुए प्रयास करते हुए कान रहते हुए शरीर सुस्त रहते हुए क्यों नहीं सुन पाते, सब कुछ होते क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कंट्रोलर और कोई है, रेगुलेटर पकड़ के बैठा, वो रेगुलेटर पकड़ कर बैठा है, वो कहां बैठा है, अरे कहां बैठा है क्या बताऊं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट हो, सभी के अंदर बैठा हुआ है, सभी के शरीर में,
कोई बच नहीं सकता। 84 लाख प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड में चाहे जलचर चाहे आकाशचर थलचर पशु पक्षी पेड़ पौधे कहीं ना हो, सभी के अंदर सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, सभी के हृदय में बैठा हूं। अरे क्यों बैठा, क्या काम है, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों बैठा है? मैं बैठा हूं, काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा है? नमत्तः स्मृतिर ज्ञानम अबोहनम च, मैं बैठ करके रेगुलेटर मोड़ रहा, मेरे हाथ में रेगुलेटर है। क्या न मेरे से मत्तः स्मृति किन्तु याददाश्त दिलाना मेरा काम है। ओहो सब याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, कैसे आएगा? रेगुलेटर बंद करके रखा तो सर पीट दो, पटक दो, छाती फाड़ दो, नहीं आएगा। और जब थोड़ा बोलूच का डर ही अभी याद आ गया, अभी याद आ गया, कंट्रोलर होने के हाथ में कंट्रोल कर रहा। मत्त स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान को भी दे रहा है, अपहनम भुला भी वही देता, वही भुला देता है। वो कौन है ऐसा कर रहा है सर? तू उसको कैसे देख पाएगा? तेरे अंदर ही बैठा है, तेरे अंदर बैठ करके तुझे परिचालित कर रहा है, तू नहीं जानता उनको। ये कौन है? ना वेदेश सर्वे, संपूर्ण वेद वेदांत में उन्हीं को जानने के लिए तो बता रहे, उसी को जान लोगे तो तेरा काम बन जाए। केवल उसी को जानना है। सचमुच ये बताए, मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य उन्हीं को जान लेना है। जिस दिन उनको जान गए उस दिन छुट्टी, फिर तो नहीं रहा, फिर अब दुख हो ही नहीं सकता, सुख हो ही नहीं सकता, अभाव हो ही नहीं सकता, तुरंत मुक्त हो जाएंगे। केवल जानने मात्र से भगवान दबा कर कहते हैं मुझे जानने सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो उनको जान नहीं पाते। वेदेश सर्वे, संपूर्ण वेद वेदांत में केवल उन्हीं को जानने के लिए बता गया। सर्व वेद वेदेश सर्वे अहम एव वैद्य हो, नहीं केवल जानने के लिए हूं, नहीं जानने के लिए हम वेदांत कृत। अरे वेद वेदांत बनाया तुम, किसी आपने बनाया? मैंने ही बनाया, अपुरुष है वेदांत कृत वेदवित, बना भी मैंने, जानता भी मैं नहीं, वेदवित मैं हूं, अहम मैं ही हूं। इस प्रकार भगवान ने ठोक पीट कर बोलते हैं अपने बारे में, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन है, इतने दुर्भागा है, सब सुन करके पढ़ करके जान करके गबा मूर्ख, फिर भी हुई फिर मैं करते रहते नहीं। जब तक किस मैं पन को उनके शरणागत करके हम उन्हीं के हैं, हे प्रभु मैं आपका हूं, मेरे और दुनिया में कुछ नहीं केवल आपके अलावा, आपके सिवा मेरे कोई नहीं है और मेरे आपके सिवा कोई नहीं। इस प्रकार के भाव जब आ जाए, केवल इसे बोलने से नहीं होगा। भगवान बोलते हैं इसे बोली वाली मुझे नहीं चले, क्या चाहिए ना पहले मन को दो मुझे, बाद में देखा जाए, एग्रीमेंट बाद में शायद नहीं होगा, सबसे पहले मन का लेन देन हो जाए, तेरा मन मुझे दे दो फिर देखो मैं अपना काम सुन दू। तो यही है सारे योगों का, सारे अभ्यासों का, सारे प्रकार नियम कानून का एकमात्र लक्ष्य है, मन को भगवान के समर्पण कर। अब कितने बड़े बड़े योगी राज हो जाओ, कितने बड़े बड़े अभ्यास नियम समाधि स्थित बन जाकर मन भगवान में नहीं गया, मन भगवान को नहीं दे पाया, सारे व्यापार कोई। अब कुछ ना करके अगर मन को भगवान में दे दिया, सारे काम कंप्लीट, समाधि से ऊपर सब चले जाएंगे, केवल मन भगवान को दे देने से। तो ये मन के जो वृत्तियां है, मन कैसे भी संसार में, भौतिक संसार में क्या चमत्कार करे, कैसे फंसा कर रखा है, कैसे प्रकार के अलग अलग प्रकार द्रव्य विषय को वशीभूत करके एक प्राणी को फंसा करके रखा है, उसी का हम देख करके फंस तो जाते हैं, लेकिन पता चलेगा उसका पीछे कारण यही है। अगर मन को वहां से हटा कर उनमें लगा दे तो उसी समय से काम बन जाए। अरे कैसे करूं, कैसे फंसू, बड़ा वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो है। तो आप आज क्या कह रहे, अर्जुन स्वयं भगवान के सामने खड़ा होकर बोला, बोले वायुरेव सुदुष्कर चंचल ही मन कृष्ण, इतने चंचल है मन, वायु को मैंने भले में मेरे कंट्रोल कर दूं, मन को नहीं कर सकता। भगवान भगवान बोले राइट, यू आर राइट, कोई अब झूठ नहीं बोल रहा, सही बात, मन इतने चंचल है, बलवान है, तो उसको तो कर नहीं सकता ना, फिर क्यों बोलते करने के लिए, इसे बिना कोई काम नहीं बने, करना ही पड़ेगा ना, कैसे होगा, कैसे होगा, प्रयास तो किया, प्रयास ना अभ्यास करो, अभ्यास करना पड़ेगा बारंबार अभ्यास, इसको कोई काम को बार 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 करना ही इसको कहा जाता है अभ्यास। तो बारंबार कर मन इसमें आ जाता, फिर हटा के लेकर फिर चला जाता, फिर हजारों बार करोड़ों बार मन को खींच करके भगवान के पास लो, एक दिन मन भगवान में टिक जाएगा।
जिस दिन टिक जाएगा आपका जो छो स्वप्न,
आप असली योगी तब बन जाएंगे जिस दिन मन भगवान और उस दिन बस। तो बाकी तो कोई शरीर वाले काम कर ही नहीं सकते हैं, केवल मनुष्य शरीर वाले ही कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में भगवान ने ये विशेष बुद्धि, ये विशेष व्यवस्था रखे हैं कि उन्होंने इस शास्त्र ज्ञान सत्संग आदि के द्वारा ये बात समझ करके मन को भगवान में दे दे, भगवान मन को लगाए, मन एवं मनुष्याणम। तो ये मन को भगवान को देना, इसी के लिए सारे उपदेश के सार ही, इसी के लिए जड़ भरत जी सारे समझा रहे हैं। देखो दुनिया के सारे जो खेल ये सब कुछ है, ये सब कुछ क्षेत्र के कारण है, ये सब मन की वृद्धियां मन के विकास ये सब है। इसको ना देख करके सारे इसमें उल्टा करके मन को भगवान के देने के लिए व्यवस्था करो, वही ये सार तत्व। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? सूक्ष्म है ये, स्थूल है ना, इसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जला सकते हैं, जल गया, ना छू सकते ना जला सकते, किसी से जलाएंगे उसको। तो इसलिए ये भगवान को देना चाहिए, जो जल नहीं सकता तो भगवान को दे, वो आपका मन है ना। अरे